أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد. السلام علیکم دوستو، پھر سے ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں اور شکار کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ اگر اسلحے کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے، تیر، تلوار، چاقو یا ان چیزوں کے ذریعے سے جانور کو اگر شکار کیا جا رہا ہے تو اس کے کیا شرائط ہیں. آج آپ کے سامنے جو ہے ہم کتے کے ذریعے سے شکار کرنے کے طریقے کو بیان کریں گے. یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شکاری کتا کسی وحشی حلال گوشت جانور کو، دیکھیں یہاں پر بھی شرط ہے، سب سے پہلے کتا شکاری ہونا چاہیے، دوسرے جو ہے وہ جانور وحشی یعنی جنگلوں میں رہنے والا ہونا چاہیے، گھروں میں پلنے والا نہیں، تیسرے جو ہے وہ حلال گوشت ہونا چاہیے. اگر وہ اس کو شکار کر لیتا ہے تو اگر اس میں جو ہے وہ چھ شرطیں پائی جاتی ہیں، چھ شرطوں کے ساتھ اگر شکار کرتا ہے تو وہ جانور پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. لیکن اس کے پاک ہونے کے لیے اور حلال ہونے کے لیے چھ شرطیں ہیں، وہ چھ شرطیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک ایک کر کے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتا جو ہے شکار کے لیے تیار کیا گیا ہو، یعنی شکار کی اس کتے کو ٹریننگ دی گئی ہو. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جب اسے کہیں کہ جا تو شکار کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جب اسے شکار کرنے سے روکتے ہیں تو فوراً رک جاتا ہے. یہ نہیں کہ سڑک سے ایک کٹکنا کتا پکڑا جو کہ کسی جانور کو دیکھتے دوڑنے لگتا ہے یا انسان کو دیکھتے دوڑنے لگتا ہے اور اس کو جو ہے جنگل میں لے کے چلے گئے اور بس اسے جو ہے جانور کو دیکھ کے دوڑتا ہے، کوئی روکے جائے رکنے کا اس کا کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ کی گئی ہو شکار کے لیے. یہ پہلی شرط ہے، جب اسے شکار کرنے کے لیے کہیں تو شکار کے لیے جائے، جب اس کو روکیں تو رک جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ کتے کو جو ہے اس کے مالک نے شکار کے لیے بھیجا ہو. مثال کے طور پر جنگل میں کتے کو لے کر آیا، شکار دکھائی دیا، کوئی ہرن دکھائی دی اور کتے کے مالک نے جو ہے وہ کتے کو فوراً اس کے پیچھے بھیج دیا. لیکن اگر جو ہے وہ مالک نے نہیں بھیجا ہے، کتا جو ہے وہ خود ہی اس نے ہرن کو دیکھا اور ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا اور اسے جو ہے وہ کاٹ کھایا اور گرا دیا، ایسی صورت میں جو ہے یہ ہرن پاک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا گوشت حلال ہے. کیوں؟ دیکھیں عزیزو، میں نے ظاہراً احکام کے درس میں تو نہیں لیکن اخلاق کے درس میں بھی پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام میں نیت کا اہم مقام ہے، نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہاں اس نے نیت نہیں کی ہے، صرف جو ہے وہ کتا گیا اور کتے نے جا کے کام کر دیا، مالک نے کوئی کام نہیں کیا ہے، مالک نے نیت نہیں کی ہے، مالک نے کتے کو حکم نہیں دیا ہے، لہذا اس جانور کا گوشت کھانا جو ہے وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو کتے کو بھیج رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ کوئی مسلمان شخص جو ہے وہ ایک شکاری کتا پالے اور اس کے گھر پہ کوئی نوکر ہو، مسلمان نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ کتا مالک کی بات بھی سنتا ہو، اس نوکر کی بات بھی سنتا ہو، اور یہ نوکر جو ہے اس کو جنگل میں لے جائے اور کہہ دے کہ جاؤ فلاں کو جانور کو دیکھ کے، ہرن کو دیکھ کے کتے کو اشارہ کرے اور شکار کرنے کے لیے چلا جائے، تو یہ بھی جائز اور حلال نہیں ہے، بلکہ جو کتے کو بھیج رہا ہے وہ مسلمان ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب کتے کو بھیج رہا ہے شکار کرنے کے لیے تو اللہ کا نام زبان پر لے کر آئے. پانچویں شرط یہ ہے کہ جس شکار پر حملہ کیا ہے کتے نے، وہ شکار جو ہے وہ کتے کے دانت مارنے کے ذریعے سے مر جائے. یعنی کتا جو اس پر حملہ کرے، دانت مارے، کاٹے اور جانور جو ہے وہ مر جائے. لیکن اگر جو ہے وہ کتا جانور کو اتنا دوڑائے کہ وہ دوڑتے دوڑتے उसकी सांस जो है वो बंद हो जाए, वहीं पर गिर के मर जाए, तो ऐसी सूरत में जो है वो जानवर हलाल नहीं है। या जो है वो कुत्ता किसी जानवर को पकड़ ले और पकड़ने के बाद जो है वो जानवर भी उससे लड़ने लगे और ये कुत्ता जो है उसके किसी तरीके से उसके गले को दबा देता है और उसकी सांस बंद हो जाती है और वो जानवर मर जाता है, तब भी ये हलाल नहीं है, बल्कि कुत्ता उसको दांत मारे और दांत मारकर जो है उसको गिराए, चाहे एक बार मारे या चंद बार मारे, तब जाकर जो है वो हलाल होगा। उसके बाद जो है वो छठी और आखिरी शर्त ये है कि जिसने कुत्ते को भेजा है, कुत्ते को भेज दिया, कुत्ते ने जाकर जो है वो हमला किया और हमला करने के बाद जो है जानवर गिर गया, तो अब जब ये जिसने कुत्ते को भेजा था जब ये उस जानवर के पास पहुँचे तो वो जानवर इसके पहुँचने से पहले ही मर चुका हो, या अगर मरा ना हो जिंदा है मिसाल के तौर पर, तो वो इतना कम उसके सामने जिंदा रहे कि उसको वक्त ना मिले ज़बह करने की, यानी जैसे मालिक पहुँचा, कुत्ते का मालिक शिकार के पास पहुँचा, फौरन जो है वो शिकार मर गया, इसको ये फुर्सत ही ना मिली कि ये चाकू निकाल कर उसको ज़बह कर सके, तो हलाल है। लेकिन अगर जो है ये जिंदा हो, यानी जानवर जिंदा है और मालिक उसके पास पहुंच गया और जाने के बाद उसको ज़बह नहीं किया, वक्त भी था और जानवर मर गया, तो फिर ये जानवर हलाल नहीं है, बल्कि तरीका ये है कि अगर ये जानवर के पास पहुंच गया है और जानवर जिंदा है तो ये जल्दी से चाकू निकाले और चाकू निकाल कर उसको ज़बह कर दे ताकि जो है हलाल हो जाए। अगर मरने के बाद पहुंचा है तो कोई मसला ही नहीं है, चूंकि शिकार किया है, अल्लाह का नाम लेकर भेजा है, शिकार की नीयत से कुत्ते ने उसको मारा है तो कोई मसला नहीं है, मालिक ने नीयत की कुत्ते ने जाकर मार दिया, अगर ये मर गया है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर जिंदा है और मालिक उसके पास पहुंच जाए तो या तो उसको ज़बह कर ले अगर वक्त है, और अगर ज़बह नहीं किया है तो फिर ये हलाल नहीं है। दोस्तों ये शराइत थे जानवर के ज़रिए से ज़बह, ये शराइत थे कुत्ते के ज़रिए से शिकार करने के किन शराइत के साथ जो है वो कुत्ते का किया हुआ शिकार पाक और हलाल है। अब हम यहाँ पर जो है वो माही के मछली के शिकार के बारे में गुफ्तगू करेंगे, मछली को कैसे जो है वो किन शराइत के साथ और कैसे दरिया से निकालना चाहिए, इस बारे में हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला मसला ये है कि वो मछली के जो बाज़ जगहों पर छिलकेदार कहते हैं या बाज़ जगहों पर किरणदार कहते हैं, यानी किरण वाली मछली, अगर उसको पानी से ज़िंदा निकाल लिया जाए, दरिया से मछली को किसी भी तरीके से, वो चाहे जाल के ज़रिए से हो या कांटे के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से, किसी भी तरीके से जो है, या ऐसे ही इंसान जो है वो पानी कम है, पानी के अंदर गया और मछली को पकड़ लिया, या मछलियाँ ऊपर आ रही है और ऊपर से उनको पकड़ लेता है, किसी भी तरीके से अगर पानी के अंदर से जो है वो ज़िंदा ले लिया गया है और पानी के बाद आकर मछली मरती है तो वो मछली पाक भी है और उसका खाना जायज़ है। लेकिन अगर मछली पानी के अंदर मर जाए तो वो पाक तो है, क्यों? इसलिए कि खून जहिंदा नहीं रखती, यानी ऐसा खून नहीं रखती कि उसको ज़बह किया जाए तो वो खून उछल कर निकले, खून तो उसके अंदर ऐसा नहीं पाया जाता है, लिहाजा वो पाक है, लेकिन चूंकि पानी के अंदर मर गई है इसलिए उसका खाना हराम है, क्यों? इसलिए कि मछली के हलाल होने के लिए शर्त यह है कि उसको पानी के अंदर से ज़िंदा निकाल लिया जाए। कांटे के अंदर ज़रिए जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं ठीक है वो ज़ख्मी हो जाती है कांटे से अक्सर, लेकिन जो है ज़िंदा रहती है लिहाजा वो पाक है। दूसरे ये कि कुछ शराइत जो हमने शिकार वगैरह में बयान किए हैं वो और ज़बह में भी बयान किए हैं वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, शिकार में ज़रूरी था जानवर को शिकार करने वाला मुसलमान हो, या मुसलमान के ज़रिए से कुत्ते को भेजा गया हो, या जो है इसी तरीके से ज़बह करने वाला मुसलमान हो, लेकिन यहाँ पर जो इंसान मछली को पकड़ता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब वो मछलियाँ पकड़ रहा है तो अल्लाह के नाम को ज़बान पर जारी करे, बल्कि जब मुसलमान उससे मछली ले रहा है, यानी मुसलमान किसी गैर मुसलमान से मछली ले रहा है, ख़रीद रहा है, तो उस वक्त जो है मुसलमान को ये जान लेना चाहिए कि इस मछली को पानी से ज़िंदा निकाला गया है और ये जो है पानी के बाहर आने के बाद मरी है, ये जान लेना जो है काफ़ी है, और सिर्फ इसी जानने के बाद जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मछली पकड़ने वाला मुसलमान हो, मछली पकड़ने वाला जो है वो जब मछली पकड़े तो अल्लाह का नाम जो है वो ज़बान पर जारी करे। ये सारे शराइत जो हैं मछली के सिलसिले में नहीं है। एक आखिरी मसला और मछली के सिलसिले में है, और वो ये है कि जिस तरीके से हमने जानवरों की बहस में बयान किया था कि अगर जानवर को ज़बह किया है तो उसको हरकत करने दीजिए, और जब उसकी रूह निकल जाए तब वो हलाल होता है, जब तक रूह ना निकले तब तक हलाल नहीं होता है। लेकिन मछली में ऐसा नहीं है। मछली जो है वो जैसे दरिया से निकाली, अगर ज़िंदा भी है चाहे तो तभी भून कर खा सकते हैं, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मर जाए तब खाएंगे। ऐसे भी आमतौर पर जो है वो मछली की पानी से निकलने के बाद इतनी उम्र नहीं है, पानी से निकलने के बाद जो है वो जल्द ही मर जाती है। क्यों? इसलिए कि मछली का जीवन ही पानी है, पानी में है तो जीवित है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकलती है कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये अहकाम थे जो हमने खाने पीने, शिकार और ज़बह वगैरह करने के बारे में और खाने पीने के आदाब आपके सामने बयान किए हैं। अगले प्रोग्राम से हम इंशाल्लाह दूसरे मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे। 1 मिनट हमारे प्रोग्राम में बाकी है, उसमें जो है हम आपके सामने सिर्फ मासूमीन की सीरत को बयान कर देना चाहते हैं मछली के सिलसिले में। मछली जो है वो बेहतरीन ग़िज़ा है, अम्बिया अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ा है, और लिहाजा जो है वो मछली खाना चाहिए। ठीक है कि इसके अंदर जो है वो कांटे होते हैं और खाना मुश्किल है, लेकिन जो है वो पसंदीदा ग़िज़ा है, खुद हाजिम है, यानी दूसरी ग़िज़ाओं को हज़म करती है और खुद जल्दी हज़म हो जाती है, इंसान के बदन को जो है वो ताकत पहुंचाती है। एक दूसरी चीज़ और एक रिवायत और मछली के सिलसिले में अर्ज़ कर लूँ और बात हमारी यहीं पर तमाम हो जाती है। वो ये है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान रात में मछली खाता है और वो मछली खाने के बाद शहद या खुरमा न खाए और फिर वो बीमार हो जाए, उस पर फालिज पड़ जाए या वो बरस का मरीज़ हो जाए, तो वो सिर्फ अपने आप को मलामत करे। यानी क्या? यानी इमाम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रात में मछली खाओ तो उसके बाद जो है या तो शहद या थोड़ा सा खुरमा खा लो ताकि इस जैसी बीमारी से महफूज रह सको। ज़रूरी नहीं है कि अगर मछली खाए, खुरमा और शहद नहीं खाए तो आदमी बीमार हो जाए, लेकिन हो सकता है, एहतमाली ख़तरा है। लिहाजा इस एहतमाली ख़तरे को दूर करने के लिए अगर रात में मछली खाओ तो मछली खाने के बाद खुरमा या शहद खा लिया करो। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और बयान करेंगे कि अगर किसी इंसान को कहीं से कोई चीज़ मिल जाती है सड़क से या किसी जगह से, किसी का कुछ खो गया और किसी ने उसको उठा लिया है, तो उसके क्या अहकाम है और उसके मालिक को ढूंढने का क्या तरीका है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।